एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने अपने नाम से ही काफी उत्सुकता जगाई है, विलियम मेकपीस थैकरे का कालजयी उपन्यास वैनिटी फेयर।
जी हाँ, वैनिटी फेयर। और थैकरे मतलब विक्टोरियन युग के वो लेखक जो चार्ल्स डिकेंस के समकालीन तो थे, पर उनका अंदाज बिल्कुल अलग था।
अलग कैसे?
देखिए, डिकेंस में अक्सर एक उम्मीद, एक अच्छाई की तलाश दिखती है। थैकरे थोड़े ज्यादा, क्या कहें, यथार्थवादी थे, शायद थोड़े निंदक भी। वो इंसानी कमजोरियों, दिखावे, महत्वाकांक्षा को बिना किसी पर्दे के दिखाते थे। व्यंग उनका मुख्य हथियार था।
हाँ, और उनके अपने जीवन के अनुभव, भारत में पैदाइश, फिर इंग्लैंड में पढ़ाई, कभी बहुत पैसा देखा, कभी आर्थिक तंगी झेली, ये सब उनकी लिखाई में झलकता है ना?
बिल्कुल, खासकर समाज में वर्ग, पैसे और रुतबे का जो खेल चलता है उसे उन्होंने बहुत बारीकी से पकड़ा है। और वैनिटी फेयर जो 1847-48 में किश्तों में छपा, उसने तो उन्हें बहुत शोहरत दिलाई।
और इसका पूरा शीर्षक भी बड़ा अनोखा है, वैनिटी फेयर ए नॉवल विदाउट अ हीरो, मतलब बिना नायक वाला उपन्यास।
हाँ, ये उस जमाने के लिए काफी क्रांतिकारी बात थी। आमतौर पर उपन्यासों में एक आदर्श नैतिक नायक होता था। थैकरे ने साफ कहा, मेरी कहानी में कोई हीरो नहीं है, मेरे किरदार असली इंसान है, अच्छे भी बुरे भी, या शायद दोनों।
सही कहा। और ये नाम वैनिटी फेयर, इसका क्या मतलब है?
ये असल में जॉन बनियन की एक पुरानी धार्मिक किताब है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। उसमें एक मेले का जिक्र है वैनिटी फेयर, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर ख्वाहिश, हर लालच, हर दिखावा बिकता है जो इंसान को असलियत से दूर ले जाता है।
अच्छा,
वो थैकरे के लिए उनका पूरा समाज, वो 19वीं सदी का इंग्लैंड ही ये वैनिटी फेयर था, जहां सब कुछ बिकाऊ है, इज्जत, प्यार, दोस्ती, एक चमकदमक वाली, शोर मचाती हुई पर अंदर से खोखली दुनिया।
और कहानी का समय?
कहानी सेट है 19वीं सदी की शुरुआत में, जब नेपोलियन के साथ युद्ध चल रहे थे। और इसके पीछे दो लड़कियां जिनकी जिंदगी और मिजाज बिल्कुल अलग हैं, एक रेबेका शार्प, दूसरी अमेलिया सेडली।
तो आज हम इन्हीं की कहानी, उनके किरदारों के उतार चढ़ाव, उपन्यास के गहरे संदेशों और इसकी आज के दौर में प्रासंगिकता, इन सब पर गहराई से बात करेंगे।
बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है मिस पिंकर्टन की लड़कियों की एकेडमी से। वहां से दो लड़कियां अपनी तालीम पूरी करके निकल रही हैं,
रिबेका शार्प और अमेलिया सेडली।
हाँ, रिबेका जिसे सब बेकी कहते हैं, वो एक अनाथ है, गरीब है, लेकिन बहुत तेज है, खूबसूरत है और महत्वाकांक्षी है। उसे पता है कि इस समाज में बिना पैसे और ऊंची जान पहचान के उसकी कोई जगह नहीं, तो वो अपनी बुद्धि और आकर्षण का इस्तेमाल करना जानती है। मतलब वो अपनी किस्मत खुद बनाना चाहती है।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ है अमेलिया सेडली, वो एक अमीर घर की बेटी है, स्वभाव से नरम, सीधी साधी, थोड़ी कह सकते हैं कि जज्बाती किस्म की, दुनियादारी की समझ उसे बेकी जितनी नहीं है।
और कहानी शुरू कैसे होती है इनके निकलने के बाद?
बेकी पहले कुछ दिन अमेलिया के घर रुकती है। वहां वो अमेलिया के भाई जोस सैडली, जो अमीर है, थोड़ा मोटा और पेटू किस्म का है, उसे अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती है
शादी के लिए।
हाँ, ताकि उसकी जिंदगी सेट हो जाए, पर यह प्लान फेल हो जाता है। अमेलिया का मंगेतर है जॉर्ज ऑसबॉर्न, वो बीच में आ जाता है।
अच्छा, तो पहली कोशिश नाकाम।
नाकाम। इसके बाद बेकी को एक गवर्नेस की नौकरी मिलती है, वो सर पिट क्रॉली नाम के एक अशिष्ट बूढ़े रईस के बच्चों को पढ़ाने उनके गांव चली जाती है।
और अमेलिया, अमेलिया की सगाई तो जॉर्ज ऑसबॉर्न से तय है ही। जॉर्ज का एक बहुत वफादार दोस्त है कैप्टन विलियम डॉबिन, वो खुद भी अमेलिया को पसंद करता है लेकिन बहुत शरीफ है, तो अपने दोस्त की खुशी के लिए चुप रहता है, बल्कि वो जॉर्ज को अमेलिया के लिए उकसाता भी है।
यहाँ थोड़ा रुकते हैं। उस समाज को देखें तो खासकर औरतों के लिए एक अच्छी शादी या विरासत ही उनकी सुरक्षा की गारंटी थी, है ना?
हाँ बिल्कुल, उनके पास अपने पैरों पर खड़े होने के मौके बहुत कम थे।
तो बेकी जो जोड़ तोड़ कर रही है, क्या उसे सिर्फ चालाकी कहा जाए या वो उसकी मजबूरी भी है? समाज ही उसे ऐसे रास्ते दिखा रहा है शायद।
ये बहुत अहम सवाल है, क्या वो सिर्फ अपने माहौल की देन है? और वहीं अमेलिया की जो निष्क्रियता सी लगती है, क्या वो उसका स्वभाव है या उस समय की औरतों से यही उम्मीद की जाती थी कि वो बस हालात के साथ बहती जाएं?
आगे क्या होता है?
कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अमेलिया के पिता का व्यापार ठप हो जाता है, वो दिवालिया हो जाते हैं।
ओहो,
तो अब अमेलिया गरीब हो गई। हाँ, और जॉर्ज ऑसबॉर्न का पिता, जो बहुत घमंडी और पैसे वाला है, वो जॉर्ज को हुक्म देता है कि वो इस गरीब लड़की से सगाई तोड़ दे।
लेकिन जॉर्ज तो अमेलिया से प्यार करता था, या शायद
प्यार था या शायद अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका। डॉबिन उसे समझाता है कि एक मर्द को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए, तो जॉर्ज शायद कुछ डॉबिन के कहने पर, कुछ अपने पिता के घमंड को चुनौती देने के लिए अमेलिया से शादी कर लेता है,
पिता के खिलाफ जाकर।
हाँ, और नतीजा ये होता है कि उसका पिता उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है।
तो अब जॉर्ज और अमेलिया भी मुश्किल में।
बिल्कुल, और उधर बेकी भी पीछे नहीं रहती। वो सर पिट क्रॉली के छोटे बेटे रॉडन क्रॉली, जो एक फौजी है और थोड़ा जुआरी किस्म का है, उससे चुपके से शादी कर लेती है।
क्यों, उसे क्या उम्मीद थी?
उसे उम्मीद थी कि रॉडन की एक बहुत अमीर बूढ़ी चाची हैं, मिस क्रॉली, उसकी दौलत रॉडन को मिलेगी। पर जब मिस क्रॉली को इस शादी का पता चलता है, वो भी नाराज हो जाती हैं और रॉडन को जायदाद से बाहर कर देती हैं।
कमाल है, मतलब दोनों ही जोड़े, बेकी रॉडन और अमेलिया जॉर्ज, अब बिना पारिवारिक सहारे और पैसे के हैं।
हाँ, किस्मत ने दोनों को एक ही जगह ला खड़ा किया, लेकिन यहां से उनके रास्ते बहुत अलग होने वाले थे। और तभी कहानी में आता है वाटरलू युद्ध का साया।
हाँ, वाटरलू, ये तो इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। उपन्यास में इसका क्या महत्व है?
बहुत ज्यादा। लड़ाई से ठीक पहले का सीन ब्रसल्स में है। फौजी अफसर अपनी पत्नियों के साथ वहां है, पार्टियां हो रही हैं, नाच गाना है, एक तरह की बेचैनी भरी चमक दमक है।
और वहीं जॉर्ज ऑसबोर्न,
वहीं जॉर्ज ऑसबोर्न खुलेआम बेकी के साथ फ्लर्ट कर रहा है अमीला के सामने। वो बेकी को एक गुप्त चिट्ठी भी देता है, शायद साथ भाग जाने का इशारा था।
और फिर लड़ाई,
अगले ही दिन वाटरलू की लड़ाई छिड़ जाती है और उसमें जॉर्ज ऑसबोर्न मारा जाता है।
ओ, अमीलिया का क्या हुआ? वो तो गर्भवती भी थी।
हाँ, वो बेसहारा विधवा रह जाती है। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, वो पूरी तरह टूट जाती है।
और बेकी, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी इस सब पर?
बेकी, वो एकदम शांत और व्यवहारिक थी। जब लड़ाई की खबर से भगदड़ मचती है, लोग भागने लगते हैं, तो वो अपने घोड़े बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेती है। उसका पति रॉडन लड़ाई से सही सलामत लौट आता है। बाद में बेकी भी एक बेटे को जन्म देती है।
कितना कितना विरोधाभास है दोनों के रिएक्शन में,
है ना? वाटरलू ने एक झटके में किस्मतें बदल दी। जॉर्ज की मौत अमेलिया के लिए त्रासदी थी, पर शायद उसे एक बेवफा पति के साथ पूरी जिंदगी बिताने से भी बचा लिया। हालांकि यह सच उसे बहुत बाद में पता चलता है।
सही। और यहाँ बेकी का मुश्किल में भी अपना फायदा देखना और अमेलिया का पूरी तरह दुख में डूब जाना, ये उनके मूल स्वभाव को दिखाता है।
बिल्कुल। युद्ध के बाद बेकी और रॉडन लंदन आ जाते हैं। वो कोशिश करते हैं एक शानदार जिंदगी जीने की। बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, अमीर लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं।
पर पैसा कहाँ से आता है?
वही तो मुश्किल है। रॉडन जुआ खेलता है, कभी जीतता है, ज्यादातर हारता है। वो लोग भयंकर कर्ज में डूबे होते हैं, लेकिन बेकी अपनी होशियारी, अपनी बातों और खूबसूरती से जैसे तैसे काम चलाती है। वो समाज में ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगी रहती है
और वो कामयाब भी होती है कुछ हद तक।
हाँ, वो बहुत प्रभावशाली और कहना चाहिए कि खतरनाक आदमी मार्क्वेस ऑफ स्टाइन का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाती है।
अच्छा, और अमेलिया की जिंदगी कैसी चल रही थी इस दौरान?
अमेलिया की जिंदगी बिल्कुल उलट थी। गरीबी, अकेलापन और बस अपने बेटे जॉर्जी का सहारा। वो दिन रात जॉर्ज की यादों में खोई रहती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि डॉबिन, जो अब मेजर बन गया था और भारत में तैनात था, वो चुपके से उसकी मदद के लिए पैसे भिजवाता रहता था।
तो एक तरफ बेकी की झूठी चमक दमक और दूसरी तरफ अमेलिया का सच्चा खामोश दुख, ये वैनिटी फेयर का असली चेहरा है शायद।
सही कहा। बेकी का ये ऊपर चढ़ना कितना टिकाऊ हो सकता था? उसकी नींव ही धोखे और उधार पर टिकी थी।
तो ये नींव हिलती है?
हिलती नहीं, ढह जाती है। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। बेकी अब लॉर्ड स्टाइन की कृपा पात्र बन चुकी है। वो उसे महंगे तोहफे देता है, पैसे देता है। ये रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। समाज में कानाफूसी भी होने लगती है।
और रॉडन, उसे कुछ पता नहीं।
रॉडन अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, या शायद देखना नहीं चाहता। लेकिन एक रात वो कर्ज ना चुकाने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। जब वो जमानत पर छूटकर अचानक घर लौटता है,
तो
वो बेकी को लॉर्ड स्टाइन के साथ पाता है। स्टाइन ने उस वक्त बेकी को बहुत सारे पैसे दिए थे, शायद उसके साथ की कीमत।
फिर क्या होता है?
रॉडन गुस्से से पागल हो जाता है। वो स्टाइन पर हमला करता है, उसे घर से निकाल देता है। और तभी उसे बेकी का एक छुपा हुआ बैंक खाता मिलता है, जिसमें काफी पैसे होते हैं,
जो स्टाइन से मिले थे
शायद। रॉडन का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। वो बेकी को वहीं उसी वक्त हमेशा के लिए छोड़ देता है।
ये तो बेकी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, सामाजिक रूप से भी।
बिल्कुल, ये स्कैंडल फैल जाता है, बेकी की लंदन के समाज में सारी इज्जत खत्म हो जाती है, उसे शहर छोड़कर जाना पड़ता है, वो यूरोप में यहाँ वहाँ भटकती रहती है।
और रॉडन का क्या हुआ?
रॉडन बाद में गवर्नर बनकर एक दूर देश चला जाता है और वहीं अकेलेपन में पीत ज्वर से मर जाता है।
बहुत दुखद। उधर अमीलिया की कहानी कहाँ पहुंची?
अमीलिया के सामने भी एक मुश्किल घड़ी आती है। उसका बेटा जॉर्जी बड़ा हो रहा है, वो समझती है कि उसके पास उसे अच्छी परवरिश और शिक्षा देने के साधन नहीं है। बहुत भारी मन से वो उसे उसके अमीर दादा मिस्टर ओसबॉर्न, जो अब थोड़े नरम पड़ गए थे, के पास भेज देती है
ताकि उसका भविष्य सुधर सके।
हाँ, इसी दौरान डॉबिन भारत से वापस आता है। वो इतने सालों बाद भी अमीलिया से उतना ही प्यार करता है। वो हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करता है।
तो अमीलिया मान जाती है?
नहीं, अमीलिया अब भी जॉर्ज की यादों की बंदी है। वो डॉबिन की वफादारी और प्यार को नहीं देख पाती, वो उसे मना कर देती है।
इतने सालों के इंतजार के बाद भी?
हाँ,
डॉबिन का दिल पूरी तरह टूट जाता है, वो चुपचाप वहां से चला जाता है।
इन किरदारों की यात्राएं कितनी कितनी पेचीदा हैं, जरा इन पर अलग अलग बात करें। रेबेका शार्प यानी बिक्की, वो क्या है असल में, एक खलनायिका या कुछ और?
वो अंग्रेजी साहित्य के सबसे मजबूत और यादगार किरदारों में से एक है, एंटी हीरोइन कह सकते हैं। हाँ, वो चालाक है, जोड़तोड़ करती है, लेकिन उसकी प्रेरणा क्या है? सुरक्षा, सम्मान, समाज में एक जगह, वो एक सर्वाइवर है।
क्या हम उसे पूरी तरह दोषी ठहरा सकते हैं?
या वो अपने हालात की मारी है, उसमें पछतावा भी तो नहीं दिखता ज्यादा?
हाँ, ये सवाल ठहरे छोड़ देते हैं पाठक पर। और उसकी वो मशहूर लाइन है ना, मुझे लगता है कि अगर मेरे पास साल के 5,000 पाउंड होते तो मैं एक अच्छी औरत बन सकती थी।
हाँ हाँ, ये बहुत कुछ कहती है।
जैसे कह रही हो कि अच्छा होना भी एक तरह की विलासिता है जो गरीबों को नसीब नहीं। ये उसकी आत्मसजगता भी दिखाती है और समाज पर टिप्पणी भी है।
और अमीलिया, वो तो बेकी से एकदम उलट है।
बिल्कुल, वो पारंपरिक विक्टोरियन नारी का प्रतीक है, नर्म, भावुक, समर्पित। लेकिन उसकी कहानी भी दर्द भरी है। वो सालों तक एक भ्रम में जीती है, अपने बेवफा पति को देवता मानती है। उसका विकास बहुत धीमा है, लेकिन आखिरकार वो सच्चाई का सामना करती है।
फिर आते हैं कैप्टन, बाद में मेजर विलियम डॉबिन। क्या वो उपन्यास का नैतिक केंद्र है?
काफी हद तक। वो वफादार है, निस्वार्थ है, ईमानदार है, लेकिन उसमें भी एक कमी है। शायद वो जरूरत से ज्यादा निष्क्रिय है, अपने दुख को ओढ़े रहता है। उसका प्यार महान है, पर एक तरफा है।
और जब उसे आखिर में अमीलिया मिलती है, तो क्या उसे वो खुशी मिलती है जिसकी उसे उम्मीद थी?
थैकरे यहां भी एक उदासी का रंग घोल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे इंतजार के बाद मिली चीज अपनी चमक खो चुकी हो। खुशी है, पर शायद वैसी नहीं जैसी सोची थी।
और रॉडन क्रॉली, उसका सफर कैसा रहा?
रॉन्डन में सबसे ज्यादा बदलाव दिखता है। शुरू में वो एक लापरवाह जुआरी है, लेकिन पिता बनने के बाद, खासकर अपने बेटे रॉडी के लिए, उसका प्यार उसे बदल देता है। वो एक जिम्मेदार और स्नेही पिता बनता है।
बेकी का धोखा उसके लिए सबसे बड़ा आघात था।
हाँ, उसका अंत दुखद होता है, लेकिन पाठक की सहानुभूति उसके साथ रहती है। वो एक त्रासद किरदार बन जाता है।
तो कहानी खत्म कैसे होती है? क्या इन किरदारों को कोई समाधान मिलता है?
कहानी का आखिरी हिस्सा जर्मनी के एक छोटे से शांत शहर पंपरानिकल में घटता है। वहां संयोग से ये सब बचे हुए किरदार, अमेलिया, उसका बेटा जॉर्जी, डॉबिन और बेकी, फिर से मिलते हैं।
अच्छा, और वहां क्या होता है?
वहीं पर बेकी एक ऐसा काम करती है जिसके इरादे पर बहस हो सकती है। वो अमेलिया को जॉर्ज की वो पुरानी चिट्ठी दिखा देती है जिसमें उसने बेकी से भाग चलने की बात की थी।
इससे क्या होता है?
इससे अमेलिया का जॉर्ज को लेकर बना भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है। उसे सच्चाई दिख जाती है, वो आजाद महसूस करती है, और तब वो डॉबिन को बुलाती है
और उनकी शादी हो जाती है।
हाँ, आखिरकार उनकी शादी हो जाती है।
और बेकी, उसका क्या भविष्य होता है?
बेकी फिर से अमीलिया के भाई जो सैडली से जुड़ जाती है, जो अब काफी बूढ़ा और बीमार है। वो किसी तरह उसे अपने नाम जीवन बीमा करवाने के लिए मना लेती है, और बीमा होने के कुछ ही समय बाद जो उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है।
क्या क्या बेकी ने?
थैकरे साफ साफ नहीं कहते, लेकिन इशारा उसी तरफ है। खैर, बेकी को बीमा के पैसे मिल जाते हैं, वो आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाती है। समाज उसे पूरी तरह कभी नहीं अपनाता, लेकिन वो इंग्लैंड लौटकर दान पुण्य करने लगती है, एक इज्जतदार विधवा की तरह जीने की कोशिश करती है।
और उपन्यास की आखिरी तस्वीर क्या है?
आखिरी तस्वीर डॉबिन और अमेलिया की है। वो अपने बच्चों के साथ एक शांत सुखी जीवन जी रहे हैं, शायद बहुत रोमांचक नहीं, पर संतुष्ट।
तो अगर हम उपन्यास के मुख्य विषयों को समेटें, तो सबसे बड़ा तो यही है, वैनिटी फेयर, यानी ये दुनिया ही एक बाजार है जहां घमंड, दिखावा, पाखंड बिकता है।
और थिकरे ये सवाल उठाते हैं कि क्या बेकी जैसी खुली महत्वाकांक्षा उन लोगों के छिपे हुए लालच और दोहरेपन से ज्यादा बुरी है जो ऊपर से सम्मानित दिखते हैं।
वर्ग भेद और सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की चाहत भी एक बड़ा मुद्दा है।
बिल्कुल, उस जमाने में आपका जन्म किस परिवार में हुआ, आपके पास कितना पैसा है, यही सब कुछ तय करता था। बेकी का पूरा संघर्ष इसी व्यवस्था से है।
और भ्रम बनाम वास्तविकता का द्वंद्व,
वो तो नस नस में बसा है। अमेलिया का जॉर्ज को लेकर भ्रम, डॉबिन का अमेलिया के प्यार को लेकर भ्रम, बेकी का दूसरों के लिए भ्रम रचना, और शायद परिपक्वता इसी में है कि इन भ्रमों को तोड़कर सच्चाई को स्वीकार किया जाए।
प्यार और शादी को भी थेकरे बहुत व्यवहारिक ढंग से देखते हैं।
हाँ, वो दिखाते हैं कि अक्सर ये भावना का नहीं बल्कि पैसे, सुरक्षा या सामाजिक स्थिति का लेन देन होता है। वो आदर्शवादी रोमानी प्यार पर भी सवाल उठाते हैं।
और क्योंकि कोई आदर्श नायक नहीं है तो ये हमें नैतिकता के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अच्छे और बुरे के बीच बहुत धुंधली रेखाएं होती हैं।
सही।
अब थैकरे की शैली की बात करें तो उनका वो कठपुतली मास्टर वाला नारेटर बड़ा अनोखा है।
हाँ, वो जो कहानी सुनाते सुनाते बीच में पाठक से बातें करने लगता है।
बिल्कुल,
वो कहानी रोकता है, किरदारों पर टिप्पणी करता है, कभी मजाक उड़ाता है, कभी नसीहत देता है। वो पाठक को कहानी में सिर्फ डूबने नहीं देता बल्कि उस पर सोचने के लिए उकसाता है, एक दूरी बनाए रखता है।
और व्यंग वो तो जबरदस्त है।
अरे हाँ, वो समाज के हर तबके का, अमीरों का, फौज का, नए अमीरों का, शादी जैसी संस्था का, सबका मजाक उड़ाते हैं। विडंबना तो शीर्षक से ही शुरू हो जाती है। ये फेयर यानी मेला बिल्कुल भी फेयर यानी निष्पक्ष नहीं है।
और प्रतीक भी बहुत हैं, जैसे बेकी का हरा रंग।
हाँ, जो ईर्ष्या, पैसे और शायद उसकी सर्प जैसी चालाकी का प्रतीक है, या फिर आईने जो बार बार आते हैं और घमंड और आत्ममुग्धता दिखाते हैं। किरदारों के नाम भी शार्प, तेज, शांत, और कठपुतलियां भी जो दिखाती हैं कि हम सब समाज के मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
उपन्यास की कुछ पंक्तियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे दुनिया एक आईना है और हर आदमी को उसके अपने चेहरे का प्रतिबिंब वापस देती है।
हाँ, मतलब हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। हमारा अपना नजरिया, हमारा अपना स्वार्थ ही हमें दिखता है।
और बेकी की वो बात, अगर मेरे पास साल के 5,000 पाउंड होते तो मैं एक अच्छी औरत बन सकती थी,
ये पंक्ति हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। क्या नैतिकता वाकई परिस्थितियों पर निर्भर करती है? ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है।
और फिर वो आखिरी पंक्तियां उपन्यास के,
वेनिटास वेनिटाटम, इस दुनिया में हम में से कौन खुश है, हम में से किसकी इच्छा पूरी हुई है, या इच्छा पूरी होने पर कौन संतुष्ट है?
सब व्यर्थ है।
किन है भी, या ये बस एक अंतहीन दौड़ है?
वाकई ये उपन्यास हमें इंसानी स्वभाव की जटिलताओं और समाज की सच्चाइयों, महत्वाकांक्षा, दिखावा, वर्ग भेद, इन सब पर बहुत गहराई से सोचने को विवश कर देता है।
और ये दिखाता है कि भ्रम में जीने और कड़वी हकीकतों का सामना करने की जो कश्मकश है, प्यार और शादी के पीछे की जो सामाजिक आर्थिक मजबूरियां हैं, वे आज भी हमारे जीवन का उतना ही बड़ा हिस्सा हैं जितना थैकरे के समय में थी।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।